जयति जयति कृष्ण चैतन्य जय प्रकटे ब्रजराज। ये राधा और कृष्ण के मिलित अवतार बतलाए जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। राधा या
प्रणय
राधा कृष्ण प्रणय विकृति प्रणय विकृति लादनी स्मार्ट एक आत्मान व भू पुरा भेद देह भेद अंग चैतन्य का प्रकट मधुना तत्वैंच ऐक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुविदितम नौमी कृष्ण स्वरूप। राधा और कृष्ण दोनों एक साथ मिलित होकर के चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति। कृष्ण की प्रणय की विकृति जो है उसी का नाम है राधा, उसी को लादिनी शब्द। कृष्ण की प्रणय कृष्ण को जो प्रेम की अंतिम परिधि जो सीमा है उसमें यदि विकृति हो जाती है तो उसी का नाम लादिनी शक्ति है। तो भाव अत्यंत भाव की उत्तम अवस्था सर्वोत्तम अवस्था उसका नाम है लादिनी। राधा प्रणय विकृति लादिनी स्मार्ट। अच्छा अब उसका स्वरूप क्या बतलाते हैं। राधा और कृष्ण दोनों एक हैं, लादिनी शक्ति उनके अंदर में है। जब प्रेम की अनुभूति करने की इच्छा हुई विलास करने की इच्छा हुई तो उनका वाम अंग राधा रूप के रूप में प्रणीत हुआ, वो उनकी लादिनी शक्ति। और फिर जब दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो वही चैतन्य महाप्रभु जिसमें लादिनी शक्ति अलग रूप में और कृष्ण स्वयं शक्तिमान अलग रूप में रहते हैं तब तो ये राधा और कृष्ण के रूप में है। और जिस समय लादिनी शक्ति कृष्ण के अंदर में एक हो जाती है तो उस समय वो चैतन्य महाप्रभु के। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है कि राधा जी हैं कहा तो गया दोनों किंतु थोड़ा सा समझने के बीच बात। ये कृष्णचंद्र जी की तीन इच्छाएं हुई जो कि कृष्ण लीला में पूरी नहीं हुई। राधा जी को कृष्ण प्यार करते हैं और राधा जी कृष्ण को प्रेम करती हैं तो कृष्ण ये तो उनको प्यार करने के बाद में अपनी स्थिति समझते हैं ये क्या मेरी अनुभूति होती है। उनको देखने से उनके संग में मिलन से उनकी सेवा से उनको कैसा आनंद होता है ये तो कृष्ण समझते हैं किंतु राधा जी कृष्ण को देख करके उनको जो क्या आनंद होता है क्या भावना होती है वो कैसी स्थिति में पहुंच जाती है वो कृष्ण को पता नहीं चलता क्योंकि राधा जी को देख करके कृष्ण को जो आनंद होता है उस आनंद से अधिक बढ़ करके राधा जी का आनंद है जो कृष्ण को दर्शन करने से होता है उनका बहुत अधिक। क्योंकि राधा जी को देख करके कृष्ण मूर्छित नहीं हो जाते या उनके विरह में मूर्छित हुआ नहीं सुना जाता किंतु राधा जी तत्क्षणात मूर्छित हो जाती। कृष्ण की गोदी में रहने पर भी विरह की भावी विरह की आशंका से मूर्छित होकर के गिर पड़ती तो इसलिए कृष्ण ही राधा जी के तीन भावों को माने क्या राधा या प्रणय महिमा। राधा जी की प्रणय की महिमा क्या है। प्रणय माने क्या प्रेम की सर्वोच्च स्थिति प्रेम की सबसे प्रारंभिक स्थिति का नाम क्या है
श्रद्धा।
यदि प्रेम को एक लता मान लें तो लता का जो बीज है वो बीज है श्रद्धा। वो श्रद्धा यदि हो गई तो अब गुरु जी ने बीज हमारे हृदय में अब उसमें पानी चाहिए सिंचन के लिए तो वो पानी क्या है
श्रवण
और कीर्तन रूपी जल गुरु जी सिंचने लगे। किंतु बाधाएं बहुत सी हैं यदि बकरी आसपास में यदि चर रही हो और अंकुरित हो गया बकरी चर जाएगा कोई भी जानवर चर जाएगा और कोई इस पर चल दिया पैरों से, बैल और घोड़े और ये सब, वो तो और मसल डालेंगे, और यदि पानी नहीं मिला तो भी
सूख जाएगा।
लता बढ़ने लगी, पत्ते दो आए, फिर दो आए, फिर दो आए, बढ़ने लगी। अब उसके चारों तरफ से, अब जबकि निकल गया तो कृषक चारों तरफ से वो लगा देते हैं, जिससे कि कोई चीज आकर के उसे छपट करके खा न जाए, चर न जाए। ये सब अनर्थ हैं। अनर्थ धीरे धीरे दूर होने लगा, श्रवण कीर्तन होने लगा, पानी उसमें देने लग गया। श्रवण कौन करता है? श्रवण कीर्तन जले वही साधक अपने हृदय में उस बेल की लता का बीज गो करके बढ़ाने लगा। वो धीरे धीरे निष्ठा, निष्ठा माने क्या? निश्चलता। वो निष्ठा और कम नहीं होने की पूछेगी नहीं, निश्चित रूप से अब उसमें लग गई निष्ठा, रुचि, आसक्ति, इसके बाद में भाव, इसके बाद में प्रेम, स्नेह, मान और तप प्रणय आता है। प्रणय माने मुक्तावस्था में है, साधक की स्थिति का ये प्रणय नहीं है। नहीं, साधक की स्थिति कहाँ तक है? बस भावावस्था। अधिकांश रूप में किसी किसी को श्रद्धा हो जाए तो समझो जी बहुत कुछ हो गया। हम लोगों की श्रद्धा भी हुई कि नहीं? यदि कोई यंत्र हो लगा दिया जाए तो देखा जाएगा, तो मालूम पड़ सकता है कि हमारी श्रद्धा, इस दूध में पानी है कि नहीं है, ये पता लग जाता है ना। यंत्र दे दिया
लगता है,
या छेना निकालिए भाई इसमें कितना छेना निकला, या यंत्र के माध्यम से वो मालूम है। कंप्यूटर हो गया है ना,
कंप्यूटर से
ऐसा ही कोई कंप्यूटर मिले जो कि लगा दिया जाए और बतला दीजिए भाई श्रद्धा इसको है कि नहीं। हम समझती हैं कि मैं तो सबसे पहले फेल होऊंगा, अब इसके बाद में इसमें कितने पास होंगे मैं कह नहीं। जो सौभाग्यवान आदमी है तो उनको तो श्रद्धा होती है,
आप तो फेल करेंगे सब पास हो।
हम तो पहले ही से फेल हैं, हम तो परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं। हम कह दें भैया हम अगली वर्ष परीक्षा देंगे, मैंने श्रद्धा का लक्षण बतलाया। विश्व ब्रह्मांड उलट पुलट जाए, चाहे भिखारी होकर के रास्ते में बैठना मंजूर है, चाहे पति छोड़ दें, स्त्री छोड़ दें, घर वाले छोड़ दें, चाहे सूली की सेज पर चढ़ना पड़े, किंतु अब भगवान का भजन मैं नहीं छोड़ सकता। और उसमें गुरु जी के बातों में और शास्त्रों की बातों में और संतों की बातों में कभी भी संदेह न हो। प्राण चला जाएगा तो चला जाएगा, उनकी बात को मान करके मैं इधर उधर नहीं हूँ। जब विचार की कसौटी पर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि कहाँ श्रद्धा और कहाँ हम। अभी थोड़ी सी बात हो जाए ना, बस देखेंगे ये हम असफल हो। थोड़ा सा कोई अपमान कोई कर, गुरु जी एक शासन कर दें, देख ऐसा करेगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा, मठ में नहीं रहने दूंगा। गुरु जी नमस्कार भी नहीं करेगा, आगे से बेवरिया बस्ता ले करके घर के पीछे से गिरा करके और ले करके चल देगा। और यदि पैसा नहीं है तो देखा जी महाराज जी के तकिए के नीचे पैसा रहता है, निकाल लिया और जा करके चिट्ठी घर जब पहुंच गया, महाराज जी हमने इतना पैसा आपके तकिए से ले लिया, यही तो श्रद्धा हमारी है। गृहस्थों में श्रद्धा, यदि घर में कोई विपत्ति आ गई, लड़का बीमार हो गया, अरे ठाकुर जी मैंने इतनी सेवा की और हमारा बच्चा नहीं ठीक हो रहा, यदि अभी आज कल तक नहीं अच्छा हो गया तो आपके ये शालिग्राम को जमुना जी में एकदम पूरा रूप से स्नान करा दूंगा, फिर निकालूंगा नहीं जमुना से, बस जमुना में दे आएंगे, ये पत्थर का टुकड़ा अब तक कुछ करके कुछ नहीं हुआ। ये सब श्रद्धा नहीं है, इन्हें श्रद्धा हो। इसके बाद में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रणय। प्रणय तो बहुत मुक्त पुरुषों की बात है, और निष्ठा हो जाना ये भी बड़ा सौभाग्य की बात है। निष्ठा हो जाएगी कब? जब अनर्थ प्राय दूर हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, और हृदय में जो आसक्ति है शरीर के प्रति और शरीर से संबंधित व्यक्तियों के प्रति भी खत्म हो जाएगी, प्रतिष्ठा की भावना भी दूर हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आप रह जाएगा, तब उस समय में निष्ठा होती है। इसके बाद में रुचि, आसक्ति, भाव, इसके बाद में प्रेम। प्रेम तक कोई जगत में आदमी रह सकता है, किंतु वो अब जगत का वो अब नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद में उच्च भूमि मुक्त पुरुष के बाद में, अब इसके बाद में स्नेह, मान, प्रणय, ये सब बात है। तो वह राधा जी का ये जो प्रणय है कृष्ण के प्रति वो कैसा है? हमारा उनके प्रति प्रणय है, हम उन्हें छोड़ करके रह सकते हैं, किंतु वो तो हमें छोड़ करके नहीं रह सकते। प्रणय और राधा प्रणय महिमा कीदृशो वा अनया एव अद्भुत माधुरी। हमारी जो अत्यंत रूप की माधुरी है, पेणु माधुरी है, गुण माधुरी, लीला माधुरी, इसको राधा जी कैसे आस्वादन करते, और आस्वादन करके उनको कौन सा सुख होता है जैसे वो सब अपने को भी भूल जाती हैं। यदि मैं राधा जी हो जाऊं और तब इस चीज को मैं समझूंगी, ऐसे नहीं समझ सकता। इसलिए राधा जी तो हो नहीं सकते कृष्ण, इसलिए राधा जी के दो चीजों को चोरी कर लिया, उनके आंतरिक भाव को, वो जो प्रणय का भाव है वो चोरी कर लिया, और दूसरा उनके रूप के अंग कांति को चोरी कर, और चोरी कर करके राधिका ही बन गए, वैसा ही अभिनय में जैसा करते हैं राधिका जी, ठीक उनका भाव वो कृष्णचंद्र जी बने, ऊपर से उनका रूप का पीला कपड़ा पहन लिया, माने ये अंग कांति राधिका जी का, और उनका भाव मन में राधा जी, ये है महाप्रभु जी का शरीर। इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ, पुनः पुनः वंदना उनकी करता हूँ, कि इस श्लोक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार की सूचना की। जब तक चैतन्य महाप्रभु जी नहीं आएंगे, या तो राधा जी आ जाएं या कृष्ण स्वयं आ जाएं, और ऐसा उन्नत अधिकारी यदि व्यक्ति कोई हो तो इस प्रेम की महिमा को कोई समझे, और नहीं तो ये दोनों मिलकर के यदि आए, कृष्ण ही आए और राधा जी का भाव लेकर के और कांति प्रकट यदि हो, तब तो ये प्रेम को समझे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी की इतनी महिमा, राधा जी का भाव लेकर के, कब लिया भाव? गुरु दीक्षा के बाद में, महाप्रभु जी की गुरु दीक्षा हुई ना, कहाँ?
गया से लुट कर के तब तो हुए।
नहीं, वो तो अनुष्ठानिक था,
राजा आनंद के साथ के
बाद। धीरे धीरे गोदावरी के तट पर उन्होंने दीक्षा ली, किसके यहाँ? विशाखा जी से। राधा जी का भाव हमारे अंदर में नहीं आ रहा है, ये कैसे आएगा भाव? जब तक गृह में थे, जब तक संन्यास लिया, पूरी में भी गए, तब तो कृष्ण भजन करते थे, यही दिखलाए, और कीर्तन, कृष्ण का कीर्तन, तब तक यही उनकी प्रधानता रही। राधा भाव उनको नहीं आया, सोचा कि भाई राधा भाव ये जब तक कि उनके अंतरंग जनों का ललिता विशाखा का संग नहीं होगा तो वो भाव आएगा नहीं। इसलिए वो क्या किए, भाई तो जाएंगे हम दक्षिण में और वहीं पर विशाखा की खोज करेंगे, वहीं पर शायद मिल जाए, और तब उनके सानिध्य में दीक्षा लेकर के तब फिर राधा आवास। तो उन्होंने बहाना लगाया, लोगों से कहा भाई मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा, किस लिए? तीर्थ करने। उत्तर दिशा में तो गया हुआ आया, और वृंदावन जाने की चाह तो वो पीछे जाऊंगा, मैया ने कह दिया जे जाओ वहाँ नीलाचल में, अब थोड़ा सा दक्षिण देश में घूमाऊ, वहाँ पर रामेश्वर है और वहाँ जा पर अंतिम में ट्रिवेंडम में वो तीन दरवाजे से जिनके रास्ते होते शयन पर रहते हैं,
अनंत
अनंत अनंत सैया पर जो शयन पर हीरा में वहाँ पर रंग श्रीरंग में जाएंगे और जितने भी तीर्थ हैं उनमें हम जाएंगे। इसलिए जाएंगे हमारे भाई ने संन्यास ले लिया विश्वरूप, और संन्यास लेकर के कहाँ चले गए कोई पता ही नहीं चला, इसलिए थोड़ा सा खोजना भी हमने, ये सब बहाना। मूल चीज क्या था वो किसी को नहीं बतलाया, कोई बतलाने का अधिकारी भी उस समय तक नहीं, खोजते 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 कहीं पता नहीं। अयोध्या तीर्थ में जा रहे हैं, भाव इष्ट हो रहे हैं और कहते हैं कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि। राधा जी का या ये सब का कोई भी उल्लेख नहीं, इस प्रकार से करते हैं। अभी कोई भी भावपूर्ण कोई बात नहीं, कभी रामचंद्र जी का भी ले रहे हैं और कभी और इसी प्रकार से वो करते हैं। चलते 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 जहाँ भी जाते हैं नित्य कीर्तन होता है, उल्लास। फिर जब गए गोदावरी के तट पर, देखा ये तो जमुना जैसे ही गोदावरी, भाव विभोर हो गया और वहाँ पर जाकर के बैठ गए। और इतने में वहाँ के महाराज महाराज माने गवर्नर अथवा वाइसराय राय रामानंद जी वो वहाँ पर स्नान करने आए, नगाड़े बज रहे हैं और ब्राह्मण लोग वेद स्तुति पढ़ रहे हैं, उधर वेद स्तुति ब्राह्मण सब बड़े सुंदर रूप से पाठ करते हैं। ऐसा ये उत्तर भारत में ऐसा उच्चारण इत्यादि नहीं है, बड़ा सुंदर रूप से वो सब उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते हुए और प्रत्येक काम में वैदिक रीति से करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बड़ी विधिवत। सूर्य के समान बाल सन्यासी बड़ा सुंदर बहुत वर्ण, ये कहाँ से स्नान किया। स्नान करने के बाद में जब चलने को हुआ तो उनकी नज़र पड़ी, सच में बाल सन्यासी कहाँ से आ गया, ये बड़ा सुंदर लड़का, कुछ आकर्षित हो गया और निकट चले आए। सब लोगों को वहीं पर रख दिया, किसी ब्राह्मण ब्राह्मण को कहा जैसे आप लोग ही नहीं करेंगे। चले आने के बाद में उनको प्रणाम किया, बातचीत नहीं हुई, वो उनको ऐसे देख रहे हैं और ये एक तक उनको देख रहे हैं बैठे बैठे, बस देखते हाथ जोड़ करके ये राय रामानंद जी खड़े हैं। तो ये बाल सन्यासी कहता है आप क्या राय रामानंद हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं वही शूद्र और अधम हूँ, शूद्र और अधम अपने बस चैतन्य महाप्रभु करके खड़े हुए और उनको और उन्होंने भी उनको पकड़ लिया और दोनों प्रेम में मूर्छित होकर के आंखों सांसों की धारा गिरने लगी और मूर्छित होकर के गिर। कुछ देर के बाद में दोनों को होश हुआ, उठे, मैंने आपके संबंध में सुना था, कहाँ सुना? सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया। जब तुमको भक्ति राज्य में जब आए तो उन्होंने कहा जी भाई देखो इस पृथ्वी पर मैं दूसरा कोई एक व्यक्ति को जानता हूँ कि इस प्रेम का अधिकारी है, आप जब इस दक्षिण दिशा में जाना तो राय रामानंद से जरूर मिलना, उनको राजा समझ करके विषय समझ करके उपेक्षा मत करना, जरूर चाहिए। और उसे मैं इनको पहले नहीं समझता था, आपके दर्शन के बाद से मैं समझा जो है वो कैसे हैं, पहले मैं नहीं समझता, पहले समझता था कि ये पागल हैं भावुक हैं साधारण एक काम प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं साधक, बस इतना ही समझता, किंतु इतने उच्च साधक हैं मैंने आज मैं समझाऊँ, इसे दक्षिण धाम में जाएंगे तो जरूर। तो मैं तुम्हारे पास आपके पास में आया, तो इन्होंने कहा कि यदि वो तो उम्र में बड़े थे राय रमन, इन्होंने कहा जैसे मैं तो आप ही के लिए मिलने के लिए आया और मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं केवल आपसे मिलने के लिए धर्म आया। उन्होंने बतलाया था भट्टाचार्य, मेरी इच्छा है कि दो एक दिन यहाँ रहूँ और आप कृष्ण कथा के मर्मज्ञ हैं आपसे कुछ सुन। तो उन्होंने, यदि हमको उद्धार करने के लिए आप आए हैं तो दो चार दिन क्या कुछ दिन रख करके और हमें जरूर पिता किया। तभी लोगों के सामने बातचीत होना असंभव है, आप शाम को आ मिलिए, आपके भोजन की क्या व्यवस्था, मेरे भोजन की कोई चिंता नहीं कर। तो नहीं, उन्हें एक ब्राह्मण के को कह दिया ये आज इस सन्यासी को अपने घर में ले जाना है, निर्जन में इनका घर है और यहीं पर इनको भोजन की व्यवस्था करना, प्रसाद इनको देना, भिक्षा, और मैं शाम को अकेले वहीं पर आऊँगा, अभी रात बेस में हूँ, कब आएंगे? स्वयं भगवान इनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। देखते देखते शाम हुई, अंधकार कुछ जब होने लग गया, बस अकेले एक उनके साथ में कोई था अंग रक्षक, उसको भी दूर रख करके अकेले और किस रूप में आए, साधारण से साधारण रूप में धोती पहने हुए, बस उसको डाले हुए साधारण रूप में महाप्रभु जी को साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनको प्रणाम करने देने के साथ ही साथ उठा करके बैठे, फिर वार्तालाप होने लगी और प्रेम तत्व की गूढ़ से गूढ़ निगूढ़ शिक्षाओं को वहां पर प्रकाशित किया। ये जगत में आज तक भागवत में भी नहीं जो हुआ, चैतन्य चैतामृत में ये उपाख्यान दिया गया। वहीं पर गोपी प्रेम की महिमा, राधा जी की महिमा, और कृष्ण को किस रूप में वो देखती थी, तीनों रूप में, प्रणय, माधुरी में और उसका साधन का सुख, तीनों का उन्होंने वर्णन किया, तीनों का वर्णन। और वहां पर सब जब दीक्षा हुई उन्हें, ललिता जी की, विशाखा जी की, और इसके बाद में तो उनका भाव प्रवाह दूसरा एकदम बदल गया। तब से अब कीर्तन में नहीं, बहिरंग संग करे नाम संकीर्तन और अंतरंग लैया करे रसास्वादन। बहिरंग लोगों के साथ, बहिरंग माने जो प्रेम की निगूढ़ शिक्षाओं को नहीं जानते हैं, उन लोगों के साथ में तो कीर्तन मृदंग ले करके और उसमें मत हो जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। और जब राधा भाव का आस्वादन करते तो अंतरंगों को लेकर के बस या दो बस लेकर के और आस्वादन करते, राधा भाव में विभावित हो जाए, तब उनकी मनोरथ की पूर्ति हुई। यदि वो चैतन्य महाप्रभु आए हैं तब ये हो सकता है। ये सनातन गोस्वामी जी नारद जी को प्रणाम करें, यहो आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, आपने ये तो बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बिना नहीं होगा, और उनके परिकरों में यदि संग हो जाए, परिकर कौन, यदि रूप गोस्वामी का संग, सनातन गोस्वामी का हो जाए, विश्वनाथ को इत्यादि, जीव गोस्वामी इत्यादि, ये सब उनके परिकरों में से किसी के एक का भी हो गया तो हृदय द्रवित हो जाएगा और वो प्रेम निश्चित रूप में हो जाएगा, और कहीं भी ये राधा भाव वाला प्रेम जगत में कहीं मिलेगा ही नहीं, संभव कर नहीं। इसलिए इस श्लोक में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के रूप की सूचना उन्होंने दी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है, समस्त शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत इत्यादि शास्त्रों में ये सबका वर्णन बतलाया गया है चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु यदि नहीं आते तो वृंदावन और वृंदावन की महिमा, राधा की महिमा, ये सब जगत में नहीं प्रकाशित होती। ये चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकरों की ये सब देन है, यदि समझे तो सौभाग्यवान है और न समझे तो खाक पत्थर ऐसे ही है। यहाँ पर कह रहे हैं राधा जी यदि प्रकट होकर के और कृष्ण प्रकट होकर के आए तब तो इस प्रेम को कोई बतला सकता, ऐसे प्रेम को जो ब्रह्मा इत्यादि नारद जी के लिए भी दुर्लभ प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु ने जो सामने आया, कोई अधिकार अनाधिकार को विचार नहीं कर करके जो सामने आया उसी को ये चैतन्य अवतारे बहे प्रेमामृता बन्ना सब दिगे प्रेम भाषे प्रेमे भाषे सब जीव प्रेम भाषे पृथ्वी हई धन्य ए बन्या जेना भाषे से जीव छात ये प्रेम चैतन्य महाप्रभु के अवतार में प्रेम की बन्या बाढ़ बह गई और उसमें सभी लोग बह गए। इसमें जो नहीं बहा कोटि कल्पों में भी उसका अब प्रेम मिलना बड़ा भारी दुष्कर। और चैतन्य महाप्रभु की धारा में आकर के यदि समझने की थोड़ी सी चेष्टा की, थोड़ा सा भी यदि साधन कर लिया तो जीवन कृपा। इसलिए हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे अब किसी भी विषय में वासना में नहीं बहेंगे। महाप्रभु जी इनकी इनकी भावनाओं को हृदय में धारण करने की चेष्टा, जहाँ से मिल जाए, बतलाया ना हरा रामानंद जी ने, यही इन्होंने नहीं बतलाया था वो क्या, ये प्रेम जहाँ से भी यदि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमे कलम जन्म कोटि
सुकृति न
लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भक्ति हो सकती है किंतु वो ऐसा प्रेम नहीं होगा। ये प्रेम कैसे होगा? वो यदि प्रेमी व्यक्ति हो चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का कृपा यदि लाभ कर दो, अपना सिर भी दे करके यदि ऐसा प्रेम मिलता है तो ग्रहण कर लो और सब चीजें मिल जाएंगी, सुकर होने पर भी मिल जाएंगी, कुकुर होने पर भी वो सब चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए हम कुत्तों की तरह में लड़ रहे हैं, ये प्रेम नहीं है। इसलिए जैसे भी सिर भी देकर के यदि आशा मिल जाए, मान अपमान जो कुछ भी है मीरा की भांति सबको छोड़ करके यदि इस प्रेम के लिए चेष्टा किया जाए, यही धन धन है। राधा ना, राधा नाम परम धन, राधा नाम है ना, कोई सुखदास का पद है, राधा का नाम ही परम धन है, राधा का प्रेम ही सबसे धन, उनके चरणों की दूरी ही परम धन है, इससे बढ़ करके और जगत में कोई धन नहीं है। तद गच्छ शीघ्रम तत् क्षेत्रम माथुरम ब्रज ब्रज भूभव निजार्थ सिद्धे त्वं ही न मात्रिक तत् दयालय। हे भूपम कुमार, मैं तुम्हें बतला रहा हूं, ये जो राधा और कृष्ण मिलित तनु या कृष्ण ही राधा भाव में विभावित होकर के कहाँ गए हैं, जगन्नाथपुरी में, उनके आने के बाद से सब वहाँ की रेणु रेणु राधा कृष्णमयी हो गई, प्रेममयी बन गई। इसलिए वहाँ के जितनी भी लीलाएं आजकल हैं वो सब उन्हीं की लीलाओं से ओत पोत होकर के, सब भावनाओं में उन्हीं का भाव लग गया। इसलिए यदि तुम प्रेम चाहते हो तो तुम पुरी में जाओ, यदि उनके कृपा कटाक्ष प्राप्त उनके परिकरों में से किसी का संग हो गया और वहां की धूली भी पड़ गई तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, उस प्रेम को पा सकते, नहीं तो नहीं होगा। भाई बड़े दयालु हैं, पात्र अपात्र का विचार नहीं करते हैं, जो सामने आए जगाई मधाई, जैसे पापी व्यक्ति को बस आंखों की करुणा दृष्टि से देख करके उसका उद्धार कर दिया, प्रेम दे दिया नहीं? इसलिए तुम क्षेत्र में जाओ। क्षेत्र में जाएंगे तो भक्त लोग पहले कहाँ जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं ना, क्या करते हैं, महाप्रभु जी के चरणों में पहले जाएंगे, राधा कांत मठ में
गंभीरा,
और गंभीरा में जा करके महाप्रभु का दर्शन करें, फिर कहाँ जाएंगे, हरिदास जी की समाधि में जाए, उनका भजन स्थल में जाए, वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ में वो सार नहीं है, केवल खोखला है, फूल फलों से और पत्तों से हरे भरे से वो भरा है। राजा ने किसी समय उसे चक्के बनवाने के लिए जगन्नाथ जी का वो चेष्टा की उस पेड़ को कटवाने के लिए, भक्त लोग बड़े दुखी हो गए। जब राजा किसी प्रकार से नहीं माना तो अंतर सार शून्य होकर के केवल ऊपर में छिलके रह गए और वैशाही का पेड़ बना रहे, और ऐसे वो उसकी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर के, अभी तक 500 वर्ष हो गए अभी तक बचा हुआ है। हरिदास ठाकुर जी कभी ठाकुर जी के मंदिर में नहीं जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, इसलिए कि मैं अब मुसलमानों का छू गया, मुसलमान जाति में पैदा, मुझे जाने का अधिकार नहीं है, मैं उस रास्ते से जाऊंगा तो रास्ता पवित्र हो जाएगा और उधर ब्राह्मण लोग चलते हैं ठाकुर जी के सेवक लोग, वो पवित्र बन जाएगा, इसलिए कभी नहीं जाएगा, बस ठाकुर जी का वो मंदिर का जो ऊपर की ध्वजा है बस उसको देख लेते और वहीं से साष्टांग प्रणाम करते और दिन रात 3 लाख परिणाम करते। और हम लोग क्या करते हैं, चलो मंदिर में न मात्र तो तुम गोलोकनाथ के दया के पात्र, तुम्हारा जन्म जब उन्होंने गोवर्धन में दिया है और गोकुल में ही दिया है तो अब वो भी कृपा कर देंगे जैसे उनके प्रेम को तुम समझ सको, मैं तुम्हारे जैसा उनका दया का पात्र, मेरा जन्म तो गोवर्धन में वृंदावन में गोकुल में नंदगांव बरसाना में नहीं, यहाँ तक कि मथुरा में भी नहीं, मथुरा मंडल में भी 84 कोसों में जन्म नहीं हुआ, तो जिनके यहाँ पर जन्म है वो कितने भारी सौभाग्यवान हैं। बहुत बड़े भारी सौभाग्य। नारद जी कहते कि हमारा जन्म न जाने कहाँ हुआ, शुद्र कुल में किस जगह हुआ। और मैं थोड़ा सा भजन करके और सनक सनंदन की कृपा से मैं कुछ हुआ, भगवान का दया का पात्र तो हूँ किंतु तुम्हारे जैसा नहीं, इसलिए तुम हमसे जैसे उच्च स्थिति में जाना तुम चाहता है। पुरुषोत्तमं प्रभो प्रियं तथेतत् पुरं पाद्यो यथा परेशता लौकिकतो उचिते हिते विभूषितं तस्य तथा इदं अमृतम्। श्रीमान उद्धव जी बीच में बोल उठे, प्रभो मैं पीछे में काट करके कुछ बोल रहा हूँ, मेरा अन्याय लौट। यदि दो संत या दो पूज्य व्यक्ति बोल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या कोई भी व्यक्ति हो, बात पूरी करने के बाद में तब कोई बात कहो, और नहीं तो कोई गुरु जी या कोई वैष्णव लोग बातचीत कर रहे हो, या हमारे माता पिता ही बातचीत कर रहे हो, और बातचीत करने के बीच में पहुंच करके महाराज जी सभा में संतों से, और ऐसा नहीं जैसे अपनी बात एकदम अड़ गए और वो सुना करके ही रहेंगे, या ऐसा करेंगे जो उनको बाध्य होकर के सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो कह रहे हैं जिसे मेरी कुछ गुस्ताखी है तो मैं कुछ जानना चाहता हूँ। जब बात समाप्त हो गया तभी बड़ी नम्रता के साथ में कह रहे हैं, आप इन्हें क्षेत्रम तथा तत्पुरुषोत्तम प्रभु प्रियम तथा एतत् परम अप्य अदो यथा पुरुषोत्तम क्षेत्र कि आप तो द्वारका से भी अधिक ये महानता बतला रहे हैं, द्वारकापुरी है उसे भी आप इसकी महिमा बड़ी बतला रहे हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं रहते हैं, जहाँ पर सत्यभामा रुक्मिणी प्रभृति रहती है, जहाँ पर कि बड़ी प्रेम की लीलाएं होती हैं, जहाँ पर कि इनके माता पिता वसुदेव और देवकी थी, और इस पुरी से भी आप जगन्नाथपुरी को श्रेष्ठ कह रहे हैं, ऐसा क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैंने उनसे सहा नहीं दिया, खुद वो रहते हैं द्वारकापुरी में ना, इसलिए उनसे सहा नहीं दिया। और बात भी जरा वैसी थी, परंतु इस क्षेत्र में क्षेत्र जैसा प्रभु का प्रिय है, द्वारकापुरी भी वैसे ही प्रिय है प्रभु को, उसे कम नहीं है, हमारे समय से तो कम नहीं है। और वहां पर जैसे लीलाएं करते हैं क्षेत्र में, ऐसी लीलाएं यहां भी करते हैं। और पुरुषोत्तम क्षेत्र जिस प्रकार से परम ऐश्वर्य में है, परम ऐश्वर्य की बात कल कही ना, कम से कम तो कितनी बोरियां हमने देखा जाए, द्वारकापुरी को ओछा बना दिया और पूरी की इतनी महीना बतला, आप इनको पूरी क्यों भेज रहे हैं, यहाँ और वहाँ तो बराबर ही है, तो इससे भी उसका क्या महत्व है जैसे इसे आप वहाँ पर पूरी में भेज रहे हैं। आप उसे ना भेज करके आप यदि ब्रज में मथुरा में भेज देते तो मैं समझता कि हाँ ये ठीक है, किंतु आप पूरी क्यों भेज रहे हैं। श्री देवकी नंदन एष न प्रभो तदरूपधारी पुरुषोत्तम एव स्वयं धैर्यं भजन क्रीडति तन्निवासिनां तत्प्रेम पुराद्राद्यं सदा मुदे। हमारे जो प्रभु हैं कृष्णचंद्र, हमारे प्रभु सखा मित्र बंधु स्वयं देवकी नंदन, और वही देवकी नंदन कुरुक्षेत्र में पुरी में गए हैं पुरुषोत्तम, वही देवकी नंदन ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्यों, उनके साथ में कौन है, बलदेव जी और कौन,
सुभद्रा।
सुभद्रा कहाँ रहती हैं,
इसमें
द्वारका, द्वारका में आप पीछे से हस्तिनापुर में चली गई अर्जुन के साथ, किंतु वहीं की रहने वाली कृष्ण की बहन है। तो ये देवकी नंदन ही जगन्नाथ की मूर्ति को धारण किए हुए हैं, वही पहले नील माधव थे और अंत में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन के रूप में वो प्रकटित हैं। अब तो रथ यात्रा आएगी ना, तो 8-9 दिन पहले से ही हम लोग रथ यात्रा का प्रसंग चैतन्य चरितामृत से पाठ करेंगे, इसको थोड़ा सा रख देंगे फिर पीछे से, बड़ा ही सरस बड़ा ही मधुर है वो बस 6 ही दिन है। यही पुरुषोत्तम जी हैं, जगन्नाथ हैं, सुभद्रा जी हैं और बलदेव जी वहाँ पर हैं, वही लोग मूर्ति देख करके और सबको दर्शन देते हैं और क्रीड़ाएं करते हैं। तस्मिन जगन्नाथ मुखाब्ज दर्शना स्नेहा प्रसादावली लाभता तदा जात्रो उत्सव अनुभवादि स्फूर तल्लास एवात्मनि नैव दीनता। उस क्षेत्र में जो वस्तु संसिद्ध है यहाँ पर भी वो सिद्ध है। अरे वहाँ पर तो मूर्ति के रूप में थे हैं जगन्नाथ, वहाँ जगन्नाथ और वो जगन्नाथ अर्थात देवकी नंदन सुभद्रा बलदेव जी तो यहाँ पर एकदम लीला कर रहे हैं साक्षात रूप में। आप इसे उनको बड़ा कर दिया और वहाँ पर भेज रहे हैं, ये मेरी थोड़ी सी समझ में ठीक नहीं है। द्वारकापुरी में और उसमें कोई भेद नहीं, बल्कि उसे में द्वारकापुरी की ही महिमा कुछ अधिक है। वो उद्धव जी जो है ना वृंदावन में गए, देखा बड़ा विचित्र बहुत अद्भुत ना, देखा सब कुछ, किंतु फिर लौट करके मथुरा में क्यों चले आए। अभी कुछ लोग गए बद्रीनारायण केदारनाथ, तो वहां से तो वहां की माधुर्य अधिक है द्वारका की, द्वारकापुरी की। ब्रज का जो चरित्र है वहां पे भी जो करते हैं लीलाएं, यहाँ पर भी वही लीला करते हैं बीच बीच में। द्वारकापुरी में भी कृष्ण लीला का अभिनय बनता है, नौ वृंदावन वहीं पर है द्वारकापुरी में कुमार का जब वहां जाएंगे भाई राबड़ी खाने को वहां पर मिलेगी, ब्रजेंद्र नंदन को भी भूल जाएंगे, तरह तरह की मिठाइयाँ और खाजे और क्या क्या लड्डू पूरी सब भूल जाएंगे। इसलिए वैभव उनके क्षेत्र में क्यों भेज रहे हैं? अरे ऐसी जगह भेजना चाहिए जो इनको ब्रज का स्मरण हो, और राज वैभव में आप भेज रहे हैं तो द्वारकापुरी से भी कम नहीं है, तो राज वैभव में पढ़ करके और वो ब्रज की भावना को वो भूल जाएगा, इसलिए नहीं भेजा जाए, भेजने से कुछ गड़बड़ हो जाएगी। कोई एक महात्मा संत थे, हमने कहा है ना लड्डू गए हुए हैं वहाँ पर ब्रज का स्मरण नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, यद्यपि वहाँ ब्रज का भाव है ना, पहाड़ जैसे देखते हैं तो उस मालूम होता है गोवर्धन जैसा है, समुद्र को देखेंगे तो नील जैसा वो यमुना जी की कुछ आभा है, किंतु साधारण लोगों के लिए नहीं है। यह किसके लिए है? बहुत उन्नत जो अधिकारी हैं उन लोगों के लिए संभव है। हम लोग जाएंगे तो वहाँ क्या ब्रज का भाव मिलेगा? देखिए बालू का एकदम टीबी है, और समुद्र में गए स्नान करने के लिए और असावधान थोड़ा सा हो गए तो समझिए नाक और मुख में बालू समा गया और न जाने कहाँ ले करके फेंक देगा। धोती और लोटा में कैसे पाएंगे राधा कृष्ण प्राण मोल जुगल किशोर, ये कैसे हो जाए? तब तो जीवन सार्थक है सब। इसलिए ऐसे समाज में ऐसे परिवेश में रहना चाहिए जैसे कि ये भावों की वृद्धि, और इसी जन्म में भगवान को पाए। यहाँ पर तो हमारे समझ से ये ठीक नहीं, जहाँ दीनता नहीं है वहाँ पर भजन नहीं, तो यहाँ पर जब खाने के लिए पूरा मिल जाता है, रोटी के टुकड़े के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता है और कपड़े लत्ते मिल ही जाते हैं, दिन रात समय लगा हुआ है तब विरह की अनुभूति नहीं, तो हमारे समझ से इनको यहाँ पर मत भेजिए। और फिर जो युक्ति करेंगे अब कल का क्या स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम्। गोप कुमार जी को कहा अब पुरुषोत्तम में तुम चले जाओ और वहीं पर तुम्हारी शक्ति है, पुरुषोत्तम में भगवान देवकी नंदन वहां पर ब्रज की सब लीलाओं का ही अनुकरण करते हैं, अतः तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा और वांछित वस्तु तुमको मिल जाएगी। उद्धव ने बीच ही में कहा उनको प्रणाम कर नम्रता से, ये प्रभु आप इनको वहां भेज रहे हैं तो द्वारका से उस स्थान का क्या अधिक महत्व है, द्वारका जो है और पूरी एक ही बात है, बल्कि वहां पर तो दारू प्रसन्न के रूप में जगन्नाथपुरी है और यहाँ पर सब साथ है, इसलिए आप उनको क्यों भेज रहे हैं। हमारे समझ से एक दूसरी बात, एक और चीज है बाधा उसमें आएगी, जहां पर दीनता उपस्थित होती हो साधन के लिए वो चीज उपयोगी है। वैभव विलास ऐश्वर्य यदि जहां रहेगा वहां पर धन साधन नहीं होगा, जहां पर सोने के लिए पलंग हो, रहने के लिए विराट वैभव हो, खाने पीने के लिए खूब अधिक हो, कपड़े वैसे हो, तो उसमें भजन नहीं होता है। घर छोड़ करके लोग सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, राजी इत्यादि छोड़ करके गए, महाप्रभु जी जो गए, इसलिए दीनता आएगी और दीनता में रो रो करके भगवान को पुकारा जाएगा। तो ये जगन्नाथपुरी में जैसी स्थिति है, तरह तरह के प्रसाद बिना पैसे के ही मिलेंगे और 56 बार आपको मिल सकता है, जब चाहो तभी उपलब्ध है, मंदिर में बस जाने की देर है, वहाँ पर पहुँच जाओ और मिल जाए। आजकल हो सकता है कुछ कठिनाई हो, किंतु आपकी ये बात हो रही है तब तो लोगों की धार्मिक भावना बहुत अच्छी थी, इसलिए अनायासी जैसे साधु संत लोग भी ब्राह्मण भी रहे तो उनको प्रचुर रूप में प्रसाद मिलता है और वो मिठाई से लेकर के खाजा से लेकर के सब तरह की वो चीजें मिल सकती है। तो जहाँ खाने की प्रचुरता होगी दिन रात, वहाँ पर भजन संभव होगा, सब समय मुख चलेगा तो वो भजन बन जाएगा, सब समय उसी के मन पर याद आएगी। दूसरी बात, वहाँ पर जगन्नाथ जी का सब समय दर्शन मिलेगा तो हृदय में दीनता नहीं आएगी, और वहाँ पर तरह तरह के उत्सव होते हैं, रथ, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, गुंडीचा मंदिर, स्नान यात्रा और सब चीज़ें होती हैं, उसमें तरह तरह के उत्सव जैसे ही वो चीज़ें होती हैं, इसलिए मन उसमें ऐसा दीनता ये उपस्थित नहीं हो सकता, उसका हृदय आर्द्र नहीं होता, इसलिए यह संभव पर वहाँ जाने से इसको प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। और द्वारका में और जगन्नाथपुर में कोई विशेष अंतर भी नहीं है, अतः द्वारका में ही जो चीज़ नहीं संभव है तो वहाँ पर कैसे संभव पर हो सकता, वो संभव पर नहीं, इसलिए आप उनको गोकुल में जो मत्तलों के अधीन पृथ्वी पर जो गोकुल है, वृंदावन है, वहाँ पर इसको क्यों नहीं बोलते। तस्मिन जगन्नाथ मुखा जो दर्शना महाप्रसाद आवली लाभता सरा जात्रो उत्सव अनुभव आदि उल्लास के बाद नहीं वो दिन होता, इसलिए वहाँ पर दीनता ब्रजवासी लोग अधिक सब्जी और दाल और ये सब न, बस एक तरकारी बस हो गई, और शहर में नहीं गांव में थोड़ा सा गुड़ से रोटी खा लिया, मिर्च के साथ में खा लिया और सूखी रोटी आपको मिलेगी, और जब तक वो आपको मिलेगी ये नहीं, एक बार माधुपुरी मिलेगी सुबह या बस माधुपुरी करेंगे, और जब गोवर्धन जाएंगे तो गोवर्धन की स्थिति देखेंगे, क्या देखेंगे, पेड़ सब मुरझाए हुए गिरे हुए हैं, जब गोवर्धन की तलाटी में हम लोग तो लौठा जो है
कुछरी का लौठा
जब वहाँ से चलते हैं देखते हैं कि सब पेड़ गिरे हुए हैं, तिलू के पेड़ हैं और तिलू के तरफ कुछ न करें या इधर से बैठे हैं ठीक, हमारे तरफ समुद्र समस्त पेड़ ही ऐसे हैं गिरे हुए हैं,
हम लोग वहाँ गए थे खंडीर बन पेड़ गिरे थे, किस लिए? पुराने पुराने हम समझते हैं कि ये से हजारों वर्षों कृष्ण के विरह में रो रहे और मूर्छित होकर के मानो गिरे थे। गिरिराज गोवर्धन जी जाएंगे देखेंगे इसे उसके टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो रहे हैं और गोवर्धन नीचे चले चले जा रहे जमुना जी में, किंतु कृष्ण को नहीं देखेंगे। लीला भूमि तो वही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कृष्ण का जहाँ रास हुआ गोवर्धन के चारों तरफ में वो रास स्थली है, विशेष करके सुछड़ी के लौटा के बाद में वो
नवलकुंड
नवलकुंड और
अप्सरा कुंड
अप्सरा कुंड के बाद लाला जहाँ हम याद करके बैठते हैं थोड़ी देर, जहाँ एक एक मोटे से मोटा
कदम
का पेड़ और वहीं पर
कमाल
का पेड़ राधा और कृष्ण एक एक कृष्ण एक एक गोपी का और पुराने वृक्ष हैं। अब वहाँ पर कृष्ण को नहीं दिखाया गया किंतु लीला स्थली पर उनकी क्रीड़ा भूमि के अंतर्गत, इसलिए उस समय हृदय में खेद उठता है। इच्छा करते हैं यहीं पर लोट कोट जाए और यहीं पर आकर के भजन करें और कहीं जाए। ये वृक्ष जो है कृष्ण की लीला को लीलाओं को देखा होगा और तब से ऐसे ही पड़े हुए हैं, फिर हमें व्याकुल होकर के इनके चरणों में हम लोट कोट जाएँ और ये हमारे ऊपर में कृपा कर देते तो इस लीला को जो अभी यहाँ पर है हो रही है किंतु हम जो देख नहीं रहे उस लीला को हम देख सकते, इसलिए वहाँ पर खेद उठता है। जहाँ पर माधवेंद्र कविता जहाँ पर कि कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी लीला स्थली वही गोविंद कुंड इत्यादि है, पूरा में जतिपुरा है वहाँ पर या मुखारविंद है कृष्ण वहाँ गोवर्धन जी का, तो ये सब लीलाएँ हुई वहाँ जाएंगे देखें अरे यहीं पर तो उनकी अन्नकूट की लीलाएँ थी, किंतु कृष्ण को नहीं देखने से चित्त खेदग्रस्त हो जाएगा। तो वही बतला रहे हैं तम बिना